नमस्कार, गुड इवनिंग। शुभ संध्या घड़ी में रात के 8:30 हुए और हम अपने वादे के अनुसार हाजिर हो गए आपका अपना खेल कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन लेकर। मैं हूं धर्मेंद्र और आज के हमारे मेहमान हैं जाने माने खेल विशेषज्ञ गौस मोहम्मद। गौस जी, स्वागत आपका।
बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।
आज दीपा कर्माकर ने इतिहास रचा है और उन्होंने एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। हालांकि दो दिन पहले जो स्थिति थी, बड़ी निराशाजनक स्थिति थी, वो पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, लेकिन आज उसकी भरपाई उन्होंने कर दी क्योंकि एशियन चैंपियनशिप में आज तक कोई भी गोल्ड मेडल भारत के लिए जिमनास्टिक में नहीं आया।
बेशक 30 साल की आयु में कलात्मक उसमें 2016 में ये समर ओलंपिक में भारतीय दल में थी और लगातार ये कोशिश करती रही अपनी तरफ से, बेहतरीन कोशिश। और ताशकंद में, उज्बेकिस्तान में, जैसा आपने बताया कि ये पहला गोल्ड है कलात्मक जिम्नास्टिक में भारत के लिए भी, और एशियाई चैंपियनशिप में गोल्ड जीतना एक बहुत बहुत बड़ा कारनामा है। दीपक कर्माकर ने ये कारनामा अंजाम दिया।
जी, हम आपके साथ बात करेंगे इस खबर पर और ढेर सारी बातें करेंगे अन्य दूसरी खबरों पर भी, लेकिन अब सुर्खियों पर एक नजर। दीपा कर्माकर ने ताशकंद में एशियन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पराजित होकर पीवी सिंधु उपविजेता बनी। आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला जारी। और बेल्जियम में एफआईएच प्रो हॉकी लीग में भारतीय महिला टीम अर्जेंटीना से पराजित। पुरुष टीम भी आज देर शाम अर्जेंटीना के साथ खेले। जिम्नास्टिक से ही शुरुआत करते हैं। दीपा कर्माकर ने एशियन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में आज स्वर्ण पदक जीता। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित प्रतियोगिता में उन्होंने वॉल्ट स्पर्धा में पहला स्थान हासिल किया। एक रिपोर्ट सुनते हैं वीरेंद्र कौशिक से।
रियो ओलंपिक में मामूली अंतर से पदक जीत सकने में असफल रही दीपा ने आज ऐसा प्रदर्शन किया जिससे जिम्नास्टिक में भारत के लिए नया इतिहास बन गया। वर्ल्ड स्पर्धा के फाइनल में उन्होंने 13.566 अंक अर्जित किए और एशियन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी। उनके करियर के लिए पिछले कुछ वर्ष काफी चुनौती भरे रहे। चोट के साथ साथ उन्हें डोपिंग के आरोपों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन साहस का परिचय देते हुए दीपा ने पिछले साल वापसी की। उन्हें अपनी फॉर्म को वापस पाने के लिए भी काफी संघर्ष करना पड़ा। उम्मीद थी कि वो पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल कर लेंगी, लेकिन इसी प्रतियोगिता के दौरान पिछले शुक्रवार को उनके हाथ से अंतिम मौका भी फिसल गया। वे ऑलराउंड डिसिप्लिन में 16वें स्थान पर रही थी। तमाम कोशिशों के बावजूद वे 46.166 अंक अर्जित कर सकी थी, जो ओलंपिक क्वालिफिकेशन के स्तर से नीचे था। लेकिन दीपा ने अपनी उम्मीदों की लौ को बुझने नहीं दिया और तमाम मुश्किलों असफलताओं को पीछे छोड़ते हुए आखिरकार सुनहरी कामयाबी अर्जित की। हालांकि पिछले 12 वर्षों में यह पहला मौका होगा जब भारत का कोई भी जिम्नास्ट ओलंपिक में मौजूद नहीं होगा, लेकिन दीपा की ये शानदार वापसी उन्हें नया हौसला और नई ऊर्जा देगी जिससे आने वाले दिनों में वो देश के लिए और कई ऐसी सुनहरी सफलताएं हासिल करेंगी। वीरेंद्र कौशिक, स्पोर्ट्स स्कैन।
दीपा के लिए इतना सब कुछ आसान था नहीं, अगर कहें तो पिछले कुछ साल उनके लिए काफी कठिन रहे। जैसा रिपोर्ट में हमने सुना, एक तो चोट, ऊपर से डोपिंग का आरोप, और उसके बाद जब वापसी हुई तो फॉर्म वापस पाना इतना आसान था नहीं। ओलंपिक के लिए चूकने की निराशा भी जरूर रही होगी, लेकिन अब ये जो सफलता है ये इस बात की तरफ इशारा करती है कि जिम्नास्टिक, जो कि भारत में बहुत लोकप्रिय नहीं है, उस इवेंट में, उस खेल में इस तरह का प्रदर्शन करना निश्चित रूप से न सिर्फ दीपा के लिए बल्कि आने वाली युवा पीढ़ी के लिए भी बहुत सकारात्मक संदेश है।
बेशक धर्मेंद्र जी, जिस तरह से दीपा का पूरा करियर रहा है, हमेशा कोई न कोई कंट्रोवर्सी उनके पीछे रही या फिर वो मॉरल उनका इतना हाई नहीं था, क्योंकि हर एक की निगाह ये होती है कि अगर ओलंपिक नहीं तो कुछ नहीं, या एशियन गेम्स। तो जिस तरह उन्होंने संघर्ष किया, पीवी सिंधु की तरफ ध्यान था, दीपिका कुमारी की तरफ ध्यान था, इन्होंने पूरे देश का ध्यान जो आकर्षित किया, एक तूफान की तरह सब लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया, वो भी ताशकंद के अंदर। आज उन्होंने ये दिखा दिया गोल्ड जीत के कलात्मक जिम्नास्टिक में कि वो रियली बहुत मेंटली टफ हैं, और यही चीज प्रेरित करती है युवाओं को कि आप संघर्ष करते रहिए, सफलता जो है वो हासिल जरूर होती है। और दीपा ने आज ये कारनामा जो अंजाम दिया स्वर्ण जीत के, यकीनी तौर पर दाद के काबिल है।
और उधर पीवी सिंधु मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में उपविजेता रहीं। प्रतियोगिता में महिला सिंगल्स के खिताबी मुकाबले में उन्हें चीन की वांग झीये ने पराजित किया। एक रिपोर्ट सुनते हैं देवेंद्र त्रिपाठी से।
पिछले साल अक्टूबर में घुटने की चोट से उभरने के बाद ओलंपिक पदक जीत चुकी सिंधु का रिटर्न पहले की तरह नहीं रहा है और वो पिछले कई मुकाबलों की तरह इस बार भी पराजित हो गई। मलेशिया में वो खिताब के करीब पहुंचकर भी फिसल गई। पहला गेम 21-16 से जीतने के बाद ऐसा लग रहा था कि पिछले दो साल का खिताबी सूखा इस बार वो समाप्त करने में सफल रहेंगी, लेकिन 2022 सिंगापुर ओपन में खिताब जीतने के बाद अभी उन्हें और इंतजार करना होगा। पांचवी वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु को 1 घंटे 19 मिनट तक चले फाइनल में चीन की दूसरी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी वांग झीई ने मात दी। पहला गेम हारने के बाद वांग झी ने शानदार वापसी की और दूसरा गेम 21-5 से जीता। इसके बाद वांग झीई ने तीसरे गेम में पीवी सिंधु को 21-16 से हरा दिया। बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर सुपर 500 टूर्नामेंट में ये सिंधु के करियर का चौथा फाइनल था। आगामी पेरिस ओलंपिक से पहले ये जीत सिंधु के आत्मविश्वास को बढ़ाने में काफी अहम साबित हो सकती थी। वो पिछले दो ओलंपिक में भारत को मेडल दिलाने में कामयाब रही हैं। इस बार भी पेरिस में उनसे काफी उम्मीदें रहेंगी। देवेंद्र त्रिपाठी, स्पोर्ट्स कैन।
रनर्स अप रही इस टूर्नामेंट में पीवी सिंधु और काफी समय बाद कोई ऐसा टूर्नामेंट रहा जहां पर उनको पदक मिला है। 2022 के बाद अगर हम याद करें तो बहुत अच्छा पिछला दो साल उनके लिए नहीं चला है, लेकिन अब पेरिस ओलंपिक से पहले फॉर्म में लौटना, भले ही फाइनल में वो पराजित हो गई हों, लेकिन ये इस बात का संकेत है कि लय पर वो लौट आई हैं, पटरी पर लौट आई हैं, और अगर सिंधु ने अपनी रफ्तार पकड़ ली तो फिर पदक से उनको कोई नहीं रोक सकता।
बेशक, क्योंकि ये देखिए ना कि न सिर्फ उन्होंने कमबैक किया है, फाइनल में आई हैं, और फाइनल के अंदर भी जो दूसरा गेम था उसमें उन्होंने अपनी बढ़त काफी अच्छी बना रखी थी। एक टाइम पे ये हो गया था 15-15 भी हो गया था, उसके बाद बेशक वो
तीसरे गेम की आप बात कर रहे हैं,
जी हाँ, उसके अंदर वो हारी, अगर जिस तरह से उन्होंने कमबैक किया था वो बहुत बहुत बढ़िया था। और सिंधु के बारे में ये है कि देखिए बैडमिंटन के अंदर जो उनकी हाइट है उसके हिसाब से उनको एक बार नी इंजरी हुई थी, उसके बाद ये उभर के आई हैं। इंजरी से उभर के आना और एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, और वो भी चीन की जो बहुत अच्छी रैंक में है, उनके साथ उन्होंने अच्छा संघर्ष किया। ये इस बात का तो संकेत आपने कि रिपोर्ट में भी मिला, आपकी बात में भी मिला कि अब ओलंपिक के अंदर हमें उनसे बहुत अच्छी आशाएं हैं, और जो पहले से ओलंपिक में मेडल जीत चुकी हैं तो लगता है फिर समय आ गया है।
टेनिस की बात करें तो लियोन में यूके भांबरी और फ्रांस के अल्वानो ओलिविटी की जोड़ी एटीपी 250 टूर्नामेंट में उपविजेता रही। फाइनल में इस जोड़ी को बुकी हैरी होलीवारा और हेनरी पैटन ने 6-3, 6-7, 8-10 से हराया। इस प्रदर्शन से यूकी और अल्वानो की जोड़ी फ्रेंच ओपन के लिए क्वालिफाई करने की दावेदार बन गई है। बात क्रिकेट की, चेन्नई में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में इस समय सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ जारी है। हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए जो हमें ताजा जानकारी मिली है उसके अनुसार 11वें ओवर में 5 विकेट पर 62 रन बना लिए हैं। चैंपियन बनने वाली टीम को 20 करोड़ रूपये की पुरस्कार राशि दी जाएगी। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
चेपक स्टेडियम में आईपीएल के 17वें सीजन का चैंपियन बनने के लिए संघर्ष जारी है। हम आपको बता दें कि दोनों टीम में से जो भी टीम फाइनल जीतेगी उसे 20 करोड़ रुपए की प्राइज मनी दी जाएगी। ये दुनिया भर में खेली जाने वाली अलग अलग T20 लीग में सबसे ज्यादा प्राइज मनी है। फाइनल में हारने वाली टीम को भी 12.5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, आईपीएल 2024 में तीसरे स्थान पर रहे राजस्थान रॉयल्स और चौथे स्थान की टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को भी 7-7 करोड़ रुपए मिलेंगे। आईपीएल की शुरुआत 2008 में हुई थी। पहले सत्र में फाइनल जीतने वाली टीम को 4.80 करोड़ रुपए मिले थे। ये प्राइज मनी अब करीब 4 गुना बढ़ गई है। पिछले वर्ष खिताब जीतने वाली टीम चेन्नई सुपर किंग्स को 20 करोड़ रुपए दिए गए थे। इस साल भी ये प्राइज मनी इतने ही रहेगी। इंडियन प्रीमियर लीग के बाद ऐसे 20 लीग में सबसे ज्यादा प्राइज मनी दी जाती है। साउथ अफ्रीका T20 लीग जीतने वाली टीम को 15 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच इस सीजन में लीग स्टेज का सिर्फ एक मैच खेला गया था। वहीं प्लेऑफ में दोनों टीम के बीच एक मुकाबला खेला गया था। लीग स्टेज वाले मैच में केकेआर की टीम ने सनराइजर्स को 4 रन से हरा दिया था। वहीं प्लेऑफ वाले मुकाबले को केकेआर ने 8 विकेट से अपने नाम किया था। बता दें कि दोनों टीम ने इस सीजन का अपना पहला मैच एक दूसरे के खिलाफ खेला था। वहीं अब सीजन का आखिरी मैच भी दोनों टीम एक दूसरे के साथ खेल रही हैं। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
जी हाँ, बहुत ही दिलचस्प मुकाबले की उम्मीद जरूर है, लेकिन इस समय थोड़ी सी उम्मीद टूटती हुई दिखाई दे रही है अगर हम बात करें हैदराबाद की, क्योंकि 77 रन पर उसने 6 विकेट गंवा दिए हैं और मुश्किलों में फंसती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि अगर गौस केकेआर की बल्लेबाजी को देखें तो बहुत ही मजबूत बल्लेबाजी मानी जाती है केकेआर की, और इस सीजन की सबसे बेस्ट टीम है वो।
बेशक सनराइज मौसम में तो कर रहा है, इतनी जबरदस्त धूप है, लू चल रही है, लेकिन यहां अपनी सनराइज जो है बहुत मुश्किल में है। यानी 3-777-77 ये स्थिति है सनराइज की। तो इस तरह जिस केकेआर ने अपने सारे बॉलर्स को जिनको भी आजमाया उन्होंने उनको विकेट दी, चाहे वो स्टार्क हो, वैभव हो, हर्षित राणा हो दिल्ली के, नारायण ने तो हमेशा अच्छा करते हैं लेकिन यहां अभी तक विकेट नहीं लिए, आंद्रे रसल ने भी 2 विकेट ली हैं और चक्रवर्ती ने भी 1 विकेट ली है, तो सबने योगदान दिया है। एस नारायण लगता है बैटिंग में अपना कहर।
जी, सुनील नरेन की बात कर रहे हैं आप, और सुनील नरेन गेंदबाजी में नहीं बल्लेबाजी में भी बहुत अच्छे हाथ दिखाते हैं, लेकिन इस समय अगर बात करें तो बिल्कुल मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं हैदराबाद की, क्योंकि हैदराबाद की टीम अगर बड़ा स्कोर खड़ा नहीं करेगी तो फिर कोलकाता की टीम के लिए ज्यादा मुश्किलें नहीं आएंगी। अब बात करते हैं हॉकी की। बेल्जियम के एंटवर्प में FIH प्रो हॉकी लीग में आज भारतीय महिला टीम को एक और पराजय का सामना करना पड़ा। अर्जेंटीना ने भारत की टीम को 3-0 से पराजित किया। मैच का पहला गोल डी सेंटो सेलिना ने पहले ही मिनट में किया। हाफ टाइम तक अर्जेंटीना की टीम 1-0 से आगे थी। दूसरा गोल कैंपो मारिया ने 39वें मिनट में और तीसरा गोल ग्रेनेटो मारिया ने 46वें मिनट में किया। पुरुष टीम जो भारत की है वो भी आज देर शाम अर्जेंटीना के साथ खेलेगी। वैसे इस प्रो लीग की बात करें और इस चरण की बात करें जो बेल्जियम में चल रहा है, भारतीय पुरुष टीम तो कुछ ठीक ठाक प्रदर्शन कर भी पा रही है लेकिन महिला टीम का प्रदर्शन उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहा है।
कभी कभी ये होता है, क्योंकि देखिए जो रांची में जनवरी के अंदर ओलंपिक क्वालिफायर्स हुए थे उसमें भारतीय महिला टीम सफल नहीं हुई थी, तो वो जो प्रेशर, जो दबाव महिला हॉकी टीम पे है वो साफ दिख रहा है।
टूर्नामेंट का दूसरा चरण लंदन में खेला जाएगा। FIH प्रो लीग 2023-24 के पहले 2 चरण ओडिशा के भुवनेश्वर और राउरकेला में खेले गए थे। मुक्केबाजी की बात करें तो बैंकॉक में भारतीय मुक्केबाजों ने पेरिस ओलंपिक के लिए दूसरे विश्व मुक्केबाजी क्वालिफायर के तीसरे दिन आज अपना दबदबा जारी रखा। अविनाश जामवाल ने 63.5 किलोग्राम और निशांत देव ने 71 किलोग्राम भार वर्ग में आसानी से अपने मुकाबलों में जीत दर्ज की। उन्होंने पहले दौर के मुकाबले में लिथुआनिया के एंड्रिजस लावेरा नोवास को 5-0 से हराया। निशांत देव ने अर्मांडो बिगफा पर 5-0 से जीत हासिल की। तीरंदाजी में दक्षिण कोरिया के येचियोन में तीरंदाज दीपिका कुमारी विश्व कप में लगातार दूसरा पदक जीतने से चूक गईं। वो दुनिया की दूसरे नंबर की तीरंदाज लिम सी योन और तीसरे नंबर की अलेक्जेंड्रा वालेंशिया से पराजित हो गईं। दक्षिण कोरिया की लिम ने सेमीफाइनल में दीपिका पर 28-26, 28-28, 28-27, 28-27 से जीत दर्ज की। लिम की ये 1 महीने से भी कम समय में दीपिका पर दूसरी जीत है। कांस्य पदक के मुकाबले में दीपिका को मैक्सिको की वालेंशिया ने 26-29, 26-28, 28-25, 27-25, 26-29 से हराया। खबर शतरंज से। 5 बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद लंदन में 14 अक्टूबर से होने वाले WR चेस मास्टर्स कप में हिस्सा लेंगे। टूर्नामेंट में 12 खिलाड़ी भाग लेंगे। इस टूर्नामेंट को हाल ही में आधिकारिक रूप से फिडे सर्किट में शामिल किया गया है। यह बेस्ट और 2 गेम्स के KO सिस्टम के साथ एलिमिनेशन टूर्नामेंट होगा। पहली 30 चालों के लिए 60 मिनट का टाइम कंट्रोल होगा। अगली 20 चालों के लिए 30 मिनट दिए जाएंगे और शेष बाजी के लिए 30 मिनट होंगे। टाइम ब्रेक की स्थिति में रैपिड आर्मगेडन गेम होगा। और चलते चलते एक और खबर, नीरज चोपड़ा चेक गणराज्य में मंगलवार को होने वाली ओस्ट्रा व गोल्डन स्पाइक 2024 एथलेटिक्स मीट में भाग नहीं लेंगे। एहतियातन वो ऐसा कदम उठा रहे हैं क्योंकि ये ओलंपिक साल है। और गौस स्टूडियो में आने के लिए, हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
धन्यवाद, नमस्कार।
दोस्तों, घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि आज के कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, तो मुझे भी दीजिए अनुमति। नमस्कार।